आज एक विशेष बात पे चर्चा करेंगे। बाबा हमें कैसा देखना चाहता है। बहुत ही सूक्ष्मता से हमारा बाबा से बहुत प्यार है, तो जैसा वो हमें देखना चाहता है वैसा ही हमें बनना है। यदि हम बाबा की दुआएं लेना चाहते हैं, यदि हम उससे विशेष वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसा वो हमें चाहता है वैसे ही हम बनेंगे। ठीक है, आप सभी चिंतन करेंगे और कुछ बातें निकालते हैं। बाबा हमें कैसा देखना चाहता है, बोलो कैसा देखना चाहता है। सबने मुरलियां सुनी है बहुत सारी, साकार अव्यक्त, बोलो हाथ उठा के बोलेंगे। बेफिक्र बादशाह देखना चाहता है। बाबा को लगता है मैं हूं और ये चिंताओं में क्यों जीते हैं, मेरे होते हुए ये फिक्रों में जीते हों तो मेरा क्या फायदा, मैं हूं ना, ये मस्त जीवन व्यतीत करें। बहुत अच्छा उत्तर। दूसरा है खुशनुमा चेहरा, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है जो सदा बाबा की मुरलियों में आता है। बाबा अपने बच्चों को इतना खुश देखना चाहता है कि हमारी खुशी सारे संसार के गम हर ले। अब बहनें बताएंगी हैं? ये हो गया अचल अडोल चेहरा, ये भी बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन ज्यादा पावरफुल उत्तर दे दिया आपने, बहुत अच्छा। अचल अडोल साक्षी भाव में स्थित रहने वाले, कुछ भी होता रहे स्थिति बिल्कुल अचल अडोल हो, विचलित न हो जाए। थोड़ी छोटी बातों पे आ जाएं, बोलो नारायण हैं पूर्वज रूप में। दो चीजें मैं बताता हूं धारणाओं की। बाबा को वो आत्माएं बहुत प्रिय हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। इस स्वरूप में बाबा हमें देखना चाहता है, और बाबा हमें देखना चाहता है कि मेरे बच्चे सदा संतुष्ट हों, और हम भी सोचें भगवान को पाकर भी यदि कोई संतुष्ट न हो तो क्या पाकर संतुष्ट होंगे। अब और बोलो, व्यर्थ से मुक्त देखना चाहता है, बहुत अच्छा। बाबा सबको निर्विघ्न देखना चाहता है, सेंटर्स को भी, परिवारों को भी, और व्यक्तिगत जीवन को भी। जो विघ्न विनाशक हैं वही यदि विघ्नों में जीते होंगे तो संसार के विघ्न कौन हरेंगे। बहुत अच्छे उत्तर आप दे रहे हैं, और बोलो जिसको आता हो, पीछे वाले देना चाहे तो खड़े होके देंगे जरा। कैसा देखना चाहता है बाबा, खड़े होके जोर से, पंखे भी चल रहे हैं, बोलो हाथ उठा के। ठीक है, शरीर स्थिति सदा योग युक्त, और बोलो एक एक बोलेंगे तो एक आवाज, हाथ उठाओ। सदा उमंग उत्साह में देखना चाहता है, और क्या चाहता है बाबा, कि मेरे बच्चे, बोलो हैं, जीवन मुक्त देखना चाहता है। बाबा देखना चाहता है कि मेरे बच्चे अब इस दुनिया से निकल चुके हों, ऊपर दुनिया में आसक्त ना हो, जो संसार कर रहा है वो ये न कर रहे हो, बिल्कुल अलौकिक संपूर्ण पवित्र परिष्ट रूप में अब संसार भी हमको देखना चाहेगा और बाबा भी। इसी के साथ जोड़ दें, संसार हमें कैसा देखना चाहेगा और संसार आने वाले दिनों में हमसे क्या चाहेगा। हमने प्रभु पालना ली है, संपूर्ण सत्य ज्ञान उससे प्राप्त किया है, उसने अनेक शक्तियां और वरदान हमें दिए हैं। दिए हैं या नहीं? कुछ माताएं नहीं भी आ बैठी हैं, दिए हैं आप सबको? कुछ तो सोच ही रहे हैं कि ये भी मिले हैं क्या, हमें तो पता ही नहीं, हमारी दीदी ने तो बताया ही नहीं अब तक कि ये भी मिले हैं। सोच लो, सब शांतिवन वाले और पीके कॉलोनी वाले अच्छे पुरुषार्थ करने वाले बैठे हैं, अब सेवाएं तो चल ही रही हैं और चलती ही रहेंगी, सेवाओं से मुक्त होकर तो हमें रहना भी नहीं है। जिनके साथ सेवाओं का बल होता है वही योग बल इकट्ठा कर सकते हैं, जो सेवाओं का बल प्राप्त नहीं करते वो योग युक्त भी नहीं हो पाते हैं। कोई सोचे कि सब कुछ छोड़ के हम योग लगा लें, हमारे यहाँ हैं एक दो लोग सेवा थोड़ी सी करते हैं और योग में बैठने का दिखावा ज्यादा करते हैं, मेरे पास आते हैं तो मैं भी उन्हें कभी कभी हंसता हूँ कि तुम्हें कोई भी योगी नहीं कहता अब तक, क्योंकि इस तरह कोई योगी बन नहीं सकता। जीवन बहुत व्यवहारिक हो, ठीक है ना, योग बहुत लगाते हो लेकिन संस्कार वैसे के वैसे ही हो तो योग भी सफल नहीं माना जाएगा। सेवाओं में संपूर्ण समर्पणता हो। बाबा जब साकार में थे हम इस सब से बहुत गुजरे, योग चल रहा है, मुरली चल रही है, तब तो ये स्पीकर आदि नहीं थे, ये माइक भी नहीं थे, मुरली सुननी है तो क्लास में ही जाना है, लेकिन बाबा भी थे, पार्टी आ गई है, विनोद भाई रोटी पकानी है, कहेगा यहाँ क्या कर रहे हो, पीछे मुरली पढ़ना, जाओ रोटी पकाओ, घर में मेहमान आए हो और हम उनके लिए भोजन ही न बनाए कैसा लगेगा। तो बाप के तो सब बच्चे आते थे ना, तो जब जिस चीज की आवश्यकता है उसको संपूर्ण डेडिकेशन के साथ करना, ये भी एक योग युक्त आत्मा की प्रत्यक्ष पहचान है। इसलिए हम सच्चे सेवाधारी हैं और सेवाओं का भी बहुत बल आत्मा को मिलता है, ये बल पुण्य के रूप में हमारे साथ रहता है और ये पुण्य आपदाओं और विपदाओं में हमें मदद करते हैं। इसलिए सेवाएं भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। जो तन की बहुत सेवा करेंगे, बोलो, उनका तन अच्छा, मन की सेवा करेंगे, मन अच्छा, धन की सेवा करेंगे, धन की कोई कमी नहीं, वाचा से दूसरों को ज्ञान देंगे, भंडारे भरपूर रहेंगे। सेवाओं में भी बहुत कुछ करते रहना है। तो अब बाबा की इच्छाओं को हमें पूरा करना है। सबसे बड़ी स्थिति अचल अड़ोल स्थिति, बेफिक्र बादशाह की स्थिति है, साक्षीपन की स्थिति है, जो बाबा हमारी देखना चाहते हैं। उस स्थिति से सेवा भी बहुत होगी। सभी ने सुना ही है कि विनाश को देखना खेल नहीं है। कई लोग तो विनाश का पहला झटका सहते ही ऊपर चले जाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे। अब भी देखो मुस्लिम कंट्रीज में क्या क्या हो रहा है, सुन के भी कैसा लगता है कि लोग अपनों को ही मार रहे हैं, भूल गए धर्म की शिक्षाएं, भूल गए मानवता, सब कुछ भूल गए, जो उनके ग्रंथों में कहा गया वो भी भूल गए, केवल हिंसा हिंसा हिंसा। तो ये खेल तो अब चलना है, इसलिए अचल अडोल स्थिति और साक्षी भाव के लिए हम सबको बहुत प्रैक्टिस करनी है। बेफिक्र बादशाह कैसे जिएंगे, बादशाह हमें खिलाने की चिंता किसको, माताएं बैठी हैं, आपके बच्चे खाने की चिंता करते हैं या आपको ही करनी पड़ती है, उन्हें कोई चिंता नहीं, मम्मी बैठी है टाइम पे भोजन खिलाएगी। जिनकी मम्मी स्वयं ब्रह्मा हो, जिनका बाप स्वयं भगवान हो, वो अपने खाने की चिंता भला क्यों करेंगे। बेफिक्र बादशाह बनना है, विनाश काल के लिए मैं तैयारी कराना चाहता हूं सबकी, अभी से तैयारी करेंगे ना, क्योंकि कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जिनका बाप ही भगवान हो वो भूखा थोड़ा ही रखेगा, उसने वायदा भी कर लिया है। एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुना रही थी, साबुन खत्म हो गई, सेंटर नया था, वो बाबा से बातें कर रही, बाबा कैसे बाप हो आप, साबुन भी नहीं। ये सब रूढ़ियां करके जैसे ही बाहर निकली बाद में थोड़ी देर के, तो देखा एक साबुन की पेटी कोई छोड़ गया है, वो बड़ी खुश हुई कि बाबा ने तो तुरंत सुनवाई कर ली। इस चीज को अच्छी तरह समझ लें सभी, बहुत अच्छी तरह जान लें, बाबा हमारे सच्चे दिल की हर आवाज सुनता है। और जिन्होंने बाबा के लिए बहुत कुछ कर दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपने सुख आराम भी छोड़ दिए, अपनी नींद भी छोड़ दी, बाबा उनके आह्वान पर दौड़ा चला आएगा, अब भी दौड़ा चला आता है, दौड़ा चला आएगा, ये विनाश काल में बहुत अच्छे अनुभव होते रहेंगे। क्या समझती है माताएं? नई माताएं आज बहुत दिख रही हैं। इसलिए अपने गृहस्थ में उलझ कर नहीं रह जाना, चिंतन करना मेरी इस बात पर, जो उलझ गए वो तो गए, मेरा बच्चा नहीं मानता, मेरी बहू नहीं सुनती, जब से बच्चे की शादी हुई है उसको लेके अलग हो गई है, बच्चा भी बात नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ। माताओं की रोज की कहानी मेरे पास आती है, दो माताएं ऊपर हैं, कल मैंने बहुत समझाया, फिर कह रही थी अभी पूरा नहीं हुआ और मिलना है आपसे, ये कहानी है उनकी। मैं कहा अरे भाई आजकल की बहू में पढ़ी लिखी तेज तराक आती हैं, रहने दो, वो उधर सुखी है तुम इधर सुखी रहो, पर रह नहीं पाते ना सुखी। बहू का मुंह देखने के कितने स्वप्न देखे थे, पर मुंह देखा तो ऐसा, बहू ने कहा आज से मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी, अलग हट जाओ। तो बेचारे माताओं का दिल टूट जाता है ना, लेकिन इससे बाहर निकलना है, इस सब को स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बात जिसके लिए सबको तैयार करना है, स्वयं को स्वीकार करना, जो कुछ होगा वो देखना ही पड़ेगा, हमारी मर्जी से नहीं होगा, अब तो वही होगा जो ड्रामा में प्लान है, इसलिए स्वीकार करके चलना। माताओं की सचमुच बड़ी कठिन परीक्षा होती है, मैं जानता हूं, ये तो मैं हंसी में कह रहा था, जिस बच्चे को उन्होंने प्यार से पाला, पढ़ाया, शादी कराई, और वो बच्चा तुरंत छोड़ के चला जाए बहू को लेकर, बात भी न करे, फोन भी न उठाए, तो माँ का हाल तो बिगड़ना है। इसीलिए बाबा कहता है ये देह के संबंध दुख देने वाले हैं, इनसे बाहर निकलो, अब आत्मिक दृष्टि अपनाओ और इन चीजों को स्वीकार कर लो। इसे अंतिम पेपर कौन सा होगा सबका? मोह का। ये मोह आत्माओं को दुख की अति लहर में ले जाएगा। जिसने आत्मिक भाव धारण नहीं किया उनका मोह उनके लिए धर्मराज की सजाएं हो जाएगा। इसलिए सभी माताएं विशेष रूप से इस बात पर गौर करें, मोह तो है, मां का मोह बच्चों से होता है, इसमें कोई बात नहीं है, उसको आत्मिक प्यार में बदलते चलो। मोह की दवाई है आत्मिक प्यार, मोह की दवाई अलग हो जाना नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चा अपनी पत्नी को लेके अलग हो गया, बात भी नहीं करता, माँ से मिलता नहीं है, तो माँ का मोह उसे बहुत परेशान करेगा। लेकिन अगर आत्मिक प्यार बढ़ाएंगे, वो आत्मा है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, आत्मा है, बाबा का बच्चा है, बहुत सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन पर इस चीज का गहरा असर पड़ेगा। ऐसी भी कुछ माताएं हैं, मैं ऐसी माताओं को देखकर बहुत खुश होता हूँ। बाबा कितना खुश होता होगा सोच लो, बच्चों की शादी करा दी, अब बच्चों को कह दिया बस तुम जानो तुम्हारा काम, मैं चली बाबा के पास, 6 घंटे रोज सेवा करूंगी सेंटर में जाके, अपना खाना आके बनाऊंगी, तुम्हारे सुख दुख से मुझे कुछ लेना देना नहीं, ऊपर कमरा ले लिया, मस्त रहती है, योग लगाती है, सेवा करती है। ये भी माताएं हैं ना, ऐसी माताओं की कमी नहीं है हमारे पास। तो ऐसी शिव शक्तियों को देखकर बाबा बहुत प्रसन्न होता है, और यही सद्विवेक है, यही सच्ची बुद्धिमानी है। जो मनुष्य मरने तक अटका रहे संबंधों में, वो बुद्धिमान नहीं है। तो बाबा हमें सुखदाई और संतुष्ट आत्मा देखना चाहता है। अपना एक चित्र बनाओ बहुत सुंदर, बाबा मुझे ऐसा देखना चाहता है और मेरा ऐसा स्वरूप देखकर बाबा बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ ये छोड़ दो। देखो बाबा की मुरलियों में आजकल भी एक बात आ रही है, मान सम्मान की। सेवाओं में जो मान की कामना रखते हैं, नाम हो जाए मेरा, क्या होता है याद करो, कल का ही वरदान था, उनका नाम हो जाता है। क्योंकि बाबा तो सबकी इच्छा पूरी करता है ना, भाई तुम्हें नाम चाहिए, लो अखबारों में डलवा देते हैं, टीवी पे तुम्हारा नाम रोशन करा देते, हो गया। लेकिन पुण्य समाप्त, ये किसे कहते हैं बाबा, कच्चा फल खा लिया, ओके खा लो, और कच्चा फल क्या करता है, पेट दर्द, फिर वो परेशान होते हैं, कहीं सम्मान कम मिला तो दुखी हो रहे हैं, मेरे को पूछा नहीं जाता, मैं भी तो बड़ा हूं, मैंने भी तो बहुत काम किए हैं यज्ञ में, तो फिर दुखी रहते हैं। इस गति को सभी समझकर आगे बढ़ें। आप सब तो इसमें फुल पास हैं, मैं जानता हूं, हमारे अर्जुन भाई बैठे हैं, हैं पूर्वज कुमार है ना, आप भी सब बहुत सेवाएं की बाबा की, लेकिन कभी नाम की कामना नहीं की। बहुत सारे भाई हमारे बैठे हैं यहाँ, बहनों को मैं कम जानता हूँ इस फील्ड में, भाई बहुत पुराने बैठे हैं, विनोद भाई बैठे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे, विदेश में भी रहे, लेकिन बिल्कुल सिंपल, मान की कोई इच्छा नहीं। तो ये वास्तव में दिव्यता है। और जो मान के लिए सेवा करते हैं, नाम के लिए सेवा करते हैं, उनका बल समाप्त हो जाता है, उनकी सेवा भी उनके लिए परेशानियों का कारण बन जाती है। तो हम संतुष्ट आत्मा बने, सुखदायी और संतुष्ट, हमसे सबको सुख मिलता रहे, तो भक्ति में हमारी जड़ मूर्तियां भी सबको सुख देती रहेंगी। अगर हम दूसरों का सुख छीनते रहेंगे तो हमारे मंदिरों में क्या होगा, पुजारी भी नहीं होगा, कोई जाएगा ही नहीं, कोई चढ़ावा भी नहीं चढ़ाएगा, देवी भूखी रह जाएगी एक मास तक, फिर कोई पंडित देखेगा कोई भोग ही नहीं ला रहा है तो बेचारा खुद लाएगा। सबको सुख देना है, सभी मन बनाए अपना, मुझे सबको सुख देना है। ये बात आने वाले विनाश काल में बहुत काम की होगी, क्योंकि आने वाला समय हमसे बहुत कुछ मांग करेगा। सोच लिया करें सभी, मेरे पास भी रोज एक बार तो ये सुंदर संकल्प आता है, रोज आता है, कभी सवेरे आता है कभी शाम को, तुम पूर्वज हो और तुम्हें संसार के लिए क्या क्या करना है आगे चलकर। आप सब भी ये सोचा करें, हम बड़े हैं पूर्वज हैं, हमें संसार के लिए ये 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 करना है। अपने लिए तो जी कर देख लिया, अपने परिवार के लिए भी जी कर देख लिया, अब संसार के लिए, भगवान के लिए भी जी लिए, पूरा जीवन उसकी सेवाओं में लगाया, अब संसार के काम आना है हमें। अपने को आप सभी तैयार करें, ऐसे उमंग उत्साह में बाबा हमें देखना चाहता है। किसी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था पीछे से, सदा उमंग उत्साह के उत्सव में, सदा आनंद में, कुछ करने की दृढ़ता में, कुछ करना है ताकि जीवन हल्केपन में न बीतता रहे, जीवन तेरे मेरे में और व्यर्थ संकल्पों में न बीतता रहे। कुछ महान प्राप्तियां करनी है और संसार को देना है। कर रहे हैं अपने को तैयार इसके लिए सभी? जो शांति वन वाले बहुत बैठे हैं पुराने भाई बहने, कॉलोनी वाले जो इस ग्रुप के रेगुलर अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो इस बात का रोज चिंतन किया करें, संसार को देना है। लेने वालों की भीड़ आएगी। और मैं एक बात आप सबको याद दिलाया करता हूं, फिर याद दिला देता हूं, हमारे ये तीनों स्थान क्या बन जाएंगे, महान तीर्थ। यहाँ की मिट्टी लोग मस्तक पर लगाएंगे, और मिट्टी ऐसी कैसे बनेगी, जब महान आत्माओं के चरण उस मिट्टी को छू रहे हैं तभी तो बनेगी ना, ये तो मिट्टी तो सब जगह मिट्टी है, लेकिन महान आत्माओं के चरण जिस भूमि पर पड़ रहे हैं उस भूमि को छूकर लोग मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य मानेंगे। इसलिए फिर से अब बरसात के दिन आ रहे हैं, मौसम भी अच्छा होता जाता है, गर्मी का प्रकोप समाप्त हो गया है, सबने देखा ना कुमार आए पवित्र आत्माएं तो प्रकृति कैसे शांत हुई, टेम्परेचर कितना डाउन हो गया, ये पवित्र आत्माओं का प्रभाव है ना। न जाने कौन इस ग्रुप में महान आत्मा आ गई हो, बहुत पवित्र आत्मा, तो प्रकृति भी साथ देने लगी, एकदम कहां गर्मी थी कहां बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो इन तीनों स्थानों को हम सभी को महान तीर्थ बना देना है। लाखों लोग रोज आएंगे यहाँ, 15-15 दिन के प्रोग्राम नहीं चलेंगे, एक एक दिन का चलेगा, बस दो दो दिन चलेगा, आज आए कल जाना है, सवेरे आए शाम को जाना है, ब्रह्मा भोजन मिल जाएगा थोड़ा सा, एक टोली का पीस खाओ और मुक्ति का वरदान लेकर जाओ, इन चीजों में बहुत ताकत हो जाएगी, ये चीजें साधारण नहीं रह जाएंगी, बहुत महान बन जाएंगी। इसलिए सभी को फिर से याद दिलाऊं, 10 मिनट सवेरे दस मिनट शाम को क्या करना है, सकाश 10-15 मिनट, सवेरे 4:30 से 5:15, शाम को 7:15 से 7:30। इसके अलावा भी आप अपना टाइम रख सकते हैं, मान लो कोई इस टाइम बिजी है सेवाओं में और कोई टाइम रख लें, लेकिन ये देखा गया है, आप सबने भी अनुभव किया होगा, समय यदि हम निश्चित कर लेते हैं, मान लो हमें निश्चित कर लिया हमने कि सवेरे 6 बजे हमें 10 मिनट संसार को सकाश देनी है, तो ठीक 6 बजते ही उस तरह की फीलिंग मन में उभरने लगेंगी, फर्स्ट क्लास योग युक्त स्थिति हो जाएगी और देने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा काम जो हम सदा करते आए हैं फिर करना है, मौसम बदल गया है, सड़कों पर घूमते हुए वाइब्रेशंस फैलाते रहना है, ताकि यहाँ के कण कण में स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस समा जाएं। माताओं के घर जो भी के कॉलोनी में हैं, वो भी बहुत अच्छे तीर्थ बन जाएंगे। सोचो जब लोगों को पता चलेगा कि आप 20 साल तक भगवान की पालना में रहे हो, क्या करेंगे लोग, सोच के देखो। इसलिए बाबा कहा करते थे शुरू में कि अभी तुम्हें अपने भाग्य का मालूम नहीं है, अंत में जब संसार तुम्हारे भाग्य की जय जयकार करेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने महान हैं, हमारा भाग्य का सितारा कितना चमक रहा है। तो सभी ये दोनों काम करेंगे, इस भूमि को महान तीर्थ हमें ही बनाना है, महान तीर्थ दीवारों से तो नहीं बनेंगी। जहां बाबा का आगमन होता है, जहां उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं, ऊपर मधुबन में जहां हजारों बार बाबा आए हजारों बार, वो स्थान भी सचमुच दर्शनीय स्थल बन जाएगा। ये बात बाबा ने बताई हुई है, लोग ऐसा महसूस करेंगे वहां आए और जैसे उन्हें वरदान मिल गया। बाबा के कमरे में 3 मिनट बैठे और दुख दूर हो गए, शांति स्तंभ पर 10 मिनट बैठे और जीवन की समस्याएं समाप्त हो गई, अब है समाधान मिल जाता है। और वो समय आएगा समाप्त होती रहेंगी समस्याएं। तो ऐसा सुंदर समय हम सभी का आह्वान कर रहा है, आह्वान पर हम खरे उतरें, सभी को सोच लेना है। तो हम सभी का जीवन साधारण जीवन न बीते। मुझे याद आ गई एक बात, हमारे इस तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप को देखकर दिल्ली में कुछ मुख्य भाइयों ने सारी दिल्ली में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाने का प्लान बनाया है। मेरे को फोन किया कि हमें ये प्रेरणा मिल गई है, ऊपर भट्टी करने आए थे मधुबन में, सब सेंटर वाले तैयार हो गए हैं कि हमें ऐसा ग्रुप बनाना है अपने अपने सेंटर में, और उसके एक एक दो दो भाई बहनों को मास में एक बार सबकी मीटिंग होगी, जैसे ORC में या कहीं भी, वहां भेजना है और ये श्रेष्ठ लहर फैलानी है। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर, और हम तो ये चाहते हैं हर सेंटर पर बहने, पहले बहने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बना लें, तो जहां सेंटरों में तीव्र पुरुषार्थ की लहर चलेगी क्या होगा, विघन समाप्त। जो रहने वाले भाई बहने हैं सेंटरों में वो संतुष्ट होंगे, क्योंकि बिना तपस्या के संतुष्टता आती नहीं, केवल सेवाओं से संतुष्टता आती नहीं। तीसरा फायदा होगा, सेवाओं में बहुत वृद्धि होगी। और चौथी बात, आने वालों को ज्यादा से ज्यादा पालना मिलेगी। इसलिए ये एक बहुत अच्छी लहर शुरू हुई है, कई जगह तो बने हुए हैं सेंटरों में, लेकिन दिल्ली वालों ने तो संपूर्ण दिल्ली में ये कार्यक्रम करने का पूरा प्रोग्राम बनाया है। मेरे से बहुत बहुत देर बात की जो एक भाई है जिसने ये शुरू किया और सबको कहा, बड़ी बड़ी बहनों को, भाइयों को, सब तैयार हुए, क्योंकि सेवाओं में सफलता योग साधना के बल से ही होती है। सभी आज चिंतन करेंगे अपने जीवन को देखकर, बाबा मुझे ऊपर से कैसा देखना चाहता है। अपने लिए सोचेंगे, अब ये तो हमने बात की जनरल, कैसा देखना चाहता और कितने दिन में हम वैसे ही बन जाएंगे जो हमें देखकर भगवान बहुत खुश हो। जैसे एक योग्य बच्चे को देखकर उसके माँ बाप फूले नहीं समाते, भगवान अपने योग्य बच्चों को देखकर सचमुच बहुत आनंदित होता है। होता है या नहीं? होता है। और जिनसे भगवान राजी हो जाता है उनको वो स्पेसिफिकली भी बहुत कुछ दे देता है। अनेकों को आप में से अनुभव है, कुछ विशेष गिफ्ट, कुछ विशेष शक्तियाँ, कुछ विशेष वरदान हरेक आत्मा को प्राप्त हो चुके हैं। तो आज ही ये सुंदर काम करेंगे, बिल्कुल एकांत, रोज आधा घंटा सबको एकांत अवश्य लेना है। बिल्कुल जब आप अपने से बातें कर सकें, जब बाबा के प्यार में मगन हो सकें, जब बाबा से खुले दिल से बात कर सकें। छतें भी बहुत हैं, यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई है, छतों पर जा सकते हैं, हॉल के चारों ओर घूम सकते हैं, बहुत अच्छे घूमने के बगीचे भी हैं, कहीं भी जाकर बहुत अच्छी तरह एकांत में अपने को उमंग उत्साह में रखना है। अब मेरा एक संकल्प हो रहा है, इसलिए मैं घड़ी देख रहा हूं कि हम 10 मिनट किसके लिए योग करेंगे। दादी जानकी को पेन ना हो, पेन बहुत बुरी चीज है ना, बहुत बुजुर्ग हैं, लेते रहना, हिले भी तो पेन होगा, मनुष्य थोड़ा बहुत तो हिलता ही है ना, थोड़ा गर्दन भी ऊपर उठाता है। उन्हें पेन ना हो, जिस महान आत्मा ने सबके पेन हरे हैं उनका पेन खत्म हो जाए। सोचने की बात है ना, सबसे महान त्यागी और तपस्वी जिन्हें भगवान आंखों पर रखता है उनको ये कैसा खेल देखना पड़ता है, अचानक हो जाता है। हम सब जो दादी से बहुत प्यार करते हैं, हम सब अब 10 मिनट पावरफुल योग करेंगे, लाल लाइट करें, मैं कुछ संकल्प दूंगा। चलें सभी, मस्तक सिंहासन पर बैठें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न, विघ्न विनाशक के वरदान से भरपूर, परमात्म शक्तियों से सुसज्जित, चमकती हुई मणि, अब इस तह से निकलकर मैं आत्मा उड़कर चलती हूँ अपने धाम। ब्रह्मलोक में सर्वशक्तिवान उनकी शक्तियों की अनंत किरणें चारों ओर फैल रही हैं। Thank you. परमात्मा बाबा के पास उनकी संपूर्ण शक्तियां मुझ में समा रही हैं। बाबा की शक्तियां स्वयं में भर कर मैं आत्मा नीचे उतरती हूँ। भ्रकुटि की कुटिया में और ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया फिर से मैं आत्मा परमधाम में सर्वशक्तिवान के पास
प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा नैनों में है नूर नया दुनिया का नित्य नजारा। याद तेरी भूले न भुलाए हर पल ध्यान तुम्हारा हो। याद तेरी भूले न भुलाए हर पल ध्यान तुम्हारा हो। मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा। मतवारा दिल गाता जाए बाबा तू ही हमारा नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा। ज्ञान तुम्हारा ऐसे जैसे नयन तीसरा पाए, कलमश सारे भस्म हुए, अंधियारे दूर भगाए। ज्ञान तुम्हारा ऐसे जैसे नयन तीसरा पाए, कलमश सारे भस्म हुए, अंधियारे दूर भगाए। जन्म जन्म की ज्योति जागी, उजियारा उजियारा। प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा हो, प्यारे बाबा जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा। नैनों में है नूर नया, दुनिया का नित्य नजारा।
Oh, ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शांति ओम शांति ओम शांति ओम। आई एम अ पीसफुल सोल, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है ओ शांति ओ।
आज बाबा की मुरली में बाबा पहले तो कहते हैं कि आप हो हीरे, परंतु फिर आप औरों को भी हीरे बनाने वाले, आप कौन हो? आप हो जौहरी। और फिर बाबा तो है सागर और ये है संगम, बड़ी नदी और अनेक और नदियों का सागर के साथ मिलन। तो आप कौन हो? आप हो बादल। बादल भी नंबरवार होते, जितना जितना बादल अपने में भरते जाएंगे उतना फिर जहां सूखी धरनी है वहां जाकर के बरसाएंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा हमें बहुत उमंग उत्साह दिला रहे हैं खुद को योग्य बनाने के लिए और अनेक आत्माओं को भी ऐसे ही बनाने के लिए। तो बाबा ने इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है, कौन ऐसा है जो कभी भी एक दिन भी हॉलिडे नहीं लेता हो? बाबा ने कहा शिव बाबा। तो हमने सोचा कि बाबा ने आधा क्लब तो अच्छी तरह से हॉलिडे ले ली, फिर उसके बाद भी अपना कारोबार शुरू किया, वो भी ऊपर शांति से बैठ करके किया। तो फिर संगम युग में तो बाबा इतना व्यस्त रहते नॉनस्टॉप 24 घंटा, जहां दिन है वहां सेवा करते, जहां रात है वहां भी सेवा करते। तो 24 घंटे ही बाबा की सेवाएं चलती है, एक दिन भी हॉलिडे नहीं और फिर एक दिन भी बीमार नहीं। ये है 16 तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवारत देकर सबको शाहूकार बनाना है। प्रश्न, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की संभाल चाहिए? आप सोच लेना अपना उत्तर। संग की, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है, कोई किसके संग से हीरे जैसा बन जाते, कोई फिर किसके संग से ठिकर बन जाते। जो ज्ञानवान होंगे वो आप समान जरूर बनाएंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है, कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। ये सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सत्युग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, और भी कुछ श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन और सॉल्वेंट थे, भरपूर थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इनसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेला होता है उनको संगम कहते हैं, एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब ये भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्कर फिरा, अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है, इनको जंगल कहा जाता है। वह सारा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, उस दुनिया का, उस दुनिया का, तो इसको जंगल कहा जाता और सत्युग को बगीचा कहा जाता। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, ये स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो, ये बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, सिंपल है। समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए, ये सब बाबा जो हमें बातें बता रहे हैं उसके लिए बाबा क्या कहते हैं, ये क्या है? तुम्हारी बुद्धि में ये तरावट है, ताकत मिल रही है, नरिशमेंट मिल रही है। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सत्युगी बगीचे में जा रहे हैं, अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं, वो हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहां हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे, यहां कहेंगे आत्मा अमर, शरीर नहीं, और वहां आत्मा शरीर दोनों ही अमर। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, इसको उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे, बरोबर इनमें तो पूरा ज्ञान है, सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता, फिर अंत आ जाता, फिर बच्चा बनता, पूरा चक्र चार शब्दों में भाव ने बता दिया मनुष्य का। सृष्टि भी नहीं बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधा पुरानी, फिर सारी पुरानी होती, फिर नई होंगी। ये सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते, सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी नॉलेज मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, कोई यथार्थ रीति सुना सकते, कोई नहीं सुना सकते, तो उनों को कुछ मिलता नहीं है। जोहारियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता, कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा, छोटा सा दुकान होगा, उसमें क्या रखा होगा। तुम्हारे में भी ऐसे है, जैसे देखो बाबा ने किसको याद किया होगा, जैसे देखो ये जनक है, ये अच्छा जुहारी है, उनके पास वैल्यूबल जवारत है, किसको देकर अच्छा शाहूकार बना सकती है। कोई छोटा जोहारी है, जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता। तुम सब जोहारी हो, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवारत है। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह शाहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जोहारी होंगे, अच्छे अच्छे जोहारी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते, बड़े आदमियों को अच्छी जवारत दी जाती, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर और तीसरा जादूगर। तो बाबा पहले तो सौदागर और रत्नागर का बताते, रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी है। किस बात में जादू? परिवर्तन करने की जादू और किस प्रकार की जादू? गांठों को फूल बनाना, चाहे आप कहो आप पत्थर को पारस बनाना, ये सब है उसका जादूगर का काम। एक और काम बाबा ने याद किया है बाबा कहते जादूगर भी है क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता। यहां ये बात नहीं है, यहां तो अनायस घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। भक्ति का साक्षात्कार बिल्कुल अलग, और यहां बाबा जो साक्षात्कार कराते हैं अलग। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा, कईयों को ब्रह्मा का और कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, सिर्फ ब्रह्मा को देखेंगे तो कहेंगे पता नहीं ये कौन है, कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण उन्हों को इशारा देता था। ये शुरुआत की कहानियां ऐसे बहुत थी। जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। ये पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कह सकते, पवित्रता से जन्म होता है ना। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पतित से पावन बनना है, ये बुद्धि में रहना चाहिए।